ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की दसवां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, राजशेखर का पुत्र कुलोत्तुंग पांड्य देश का राज्य करने लगा। वह बहुत ही न्यायवान था, किसी भी परिस्थिति में न्याय और धर्म से नहीं हटता था। प्रजा भी धर्म पथ के ही अनुशासक थे, यहाँ तक कि जानवरों को मारने वाले शिकारी भी मौलिक और सामान्य धर्म का पालन करने वाले थे।
एक समय ऐसे धर्मवान राजा भी धर्म संकट में पड़ गया। शिवजी अपनी लीला से पांड्यन को ऐसे ही एक संकट में डालते, फिर उसे उस संकट से बचाते भी थे। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक जंगल से जा रहा था। पत्नी को बहुत प्यास लगी और वह दोनों एक पेड़ की छाया में बैठकर पानी लेने गया। उस वृक्ष की डाली से बाण लटक रहा था,
न जाने कब के शिकारी ने उधर लटकाया था। वह बाण अब उस स्त्री जो थककर बैठी थी उस पर गिर पड़ा। अगले क्षण वह मर गई। ब्राह्मण पानी लेकर आया और उसने देखा कि एक बाण ने उस स्त्री को चेर लिया है। वह अपनी पत्नी की हालत देखकर चौंक गया। पास में उसकी बच्ची रो रही थी। उसी समय एक शिकारी वहां से जा रहा था। ब्राह्मण ने तय कर लिया कि इसी शिकारी ने मारा होगा।
शिकारी ने बिल्कुल इनकार किया और बोला, हे ब्राह्मण, सच में मैंने आपकी पत्नी को नहीं मारा। भला मैं क्यों मारूं? आपसे मुझे कोई दुश्मनी तो नहीं है और आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मैं जानता हूँ कि एक ब्राह्मण को मारना महापाप है। हमारे राजा तो इतने न्यायवान हैं कि उन्होंने हमें भी धर्म शास्त्र सिखाया है,
परंतु ब्राह्मण तो किसी भी बात को मानने में तैयार नहीं था। वह उस शिकारी को लेकर राजा के सामने गया। राजा ने उनकी परिवार सुनी। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने शिकारी से भी पूछताछ की। शिकारी ने कहा, महाराज, सच्ची तो यही है कि मैंने बाण नहीं चलाया। मैं तो जंगली जानवर को मारने वाला शिकारी हूँ। हमें तो आपने सिखाया है कि एक ब्राह्मण को मारना घोर पाप है। वैसे भी मैं ब्राह्मण के आने के बाद ही उधर गया था।
ब्राह्मण ने कहा, वह तो ठीक है, यह मेरे पीछे पीछे ही आया था, परंतु वहाँ उसके बिना और कोई नहीं था।
राजा तो धर्म संकट में पड़ गया। मन ही मन उसे लग रहा था कि शिकारी सच ही कह रहा है, लेकिन प्रमाण उसके विपरीत है।
राजा ने उन दोनों को दो तीन दिन के बाद आने का आदेश दिया और मंदिर जा पहुँचा। भगवान से बहुत प्रार्थना की। न्याय दिलाने में वह कभी नहीं चुका था। सोचते सोचते सो ही गया। सपने में वही सिद्ध पुरुष आए और कहने लगे, हे राजन, होनी को कौन डाल सकता है? इसमें शिकारी का कोई दोष नहीं है। हर किसी को होनी के सामने झुकना ही पड़ता है। हाँ, भगवान की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। तुम कल उस ब्राह्मण को लेकर चेट्टियार के घर की शादी में शामिल हो। याद रहे वेश बदल कर आना। उधर होने वाली घटना से तुम दोनों की शंका दूर हो जाएगी।
अगले दिन दोनों वेश बदल कर शादी में गए। शादी घर उत्साह, उल्लास और आनंद से भरा हुआ था। बस कुछ ही देर में वर और वधु पति पत्नी होने वाले थे। राजा और ब्राह्मण पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। इतने में उन्हें दो आवाज सुनाई दी।
एक ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो, अब थोड़ी ही देर में यह घर शोक से भर जाएगा। वर की जान जो जाने वाला है। राजा और ब्राह्मण चकित हो उठे। राजा ने ब्राह्मण को चुप होने का संकेत दिया।
दूसरे ने कहा, मित्र इसमें बुरा लगने का क्या कारण है? हम तो यमदेव के दूत हैं, हमें जो काम दिया गया है उसे सही समय पर करना हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण तो बहुत डर गया, उसने राजा को वहाँ से निकल जाने का इशारा किया, लेकिन राजा ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और दोनों उस वार्तालाप को सुनने लगे।
पहला यमदूत आगे बोला, फिर भी मित्र हमसे कितने लोगों को दुख पहुँचता है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। इस जवान वर्ग जो अभी अभी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाला है, उसकी मृत्यु के पश्चात उस वधु के बारे में तो सोचो।
दूसरे ने कहा, तुम तो इस काम के लिए लायक ही नहीं हो, इस काम के लिए मन दृढ़ रखना आवश्यक है। याद है 4 दिन पहले जब हमने उस ब्राह्मण की पत्नी की जान ली, तब भी तुमने यही कहा।
बहुत दिनों से लटके रहे बाण को हवा के झोंके से गिराने को भी तुम्हारा हाथ कांप रहा था, आज तो उस भैल को चेप कर भीड़ में भगाना है। लोग जब तितर बितर होंगे, दुल्हा गिर कर मर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम यह काम कर पाओगे, आज मैं ही यह काम कर डालूंगा। बस कहते कहते न जाने क्या हुआ, अचानक एक बैल दौड़ते हुए आकर ठीक आमंत्रित अतिथि गणों के बीच घुस गया। क्षण भर में दुल्हा मर गया। ब्राह्मण को अब समझ में आया कि उसकी पत्नी कैसी मरी, और इसमें उस शिकारी का कोई दोष नहीं था। उसने राजा से क्षमा याचिका की।
राजा को भी अब सच का पता चल गया, वे दोनों वहाँ से निकल पड़े। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप अब जान गए होंगे कि शिकारी का कोई दोष नहीं है, जो होना था सो हो गया।
अब अपनी बच्ची का पालन पोषण में ध्यान दीजिए, जल्दी ही उस बच्ची की मुस्कान में अपना दुख दर्द भूल जाएंगे। भगवान शिव जी में विश्वास रखिए, केवल वही है जो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं।
अगले दिन राजा ने शिकारी को निर्दोष घोषित कर दिया।
कुलोत्तुंग पांडियन के ही शासन में और एक लीला भी हुई। परदेश से एक वृद्ध योद्धा आया, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वृद्धावस्था में उसे देश की सेना से निकाल दिया गया था। मगलय में कुलोत्तुंग राजा ने उसे जवानों को युद्ध कला सिखाने की नौकरी दी। योद्धा ने भी मन लगाकर शिक्षा दी, वह भी बड़ा शिवभक्त था।
उनके शिष्यों में चित्तर नायक का एक जवान था, बहुत जल्दी ही प्रशिक्षण पा लिया, बिना कोई कारण अपने ही गुरु से ईर्ष्या करने लगा। सी इलाके में वह भी शिक्षित बन गया। बार बार वह उस वयोवृद्ध को छेड़ रहा था। उसकी पत्नी जो उसकी माँ जैसी थी, उससे दुर्व्यवहार करने लगा।
योद्धा की पत्नी ने मंदिर जाकर बहुत प्रार्थना की, ऐसी संकट को वह अपने पति से भी सह नहीं पाती थी। शिव जी मुस्कुराए और अगली लीला के लिए तैयार हो गए।
दूसरे दिन पौ फटते ही वृद्ध योद्धा नदी में स्नान करके मंदिर की ओर चल पड़े। अब उन्हें युद्धशाला पहुंचने में देर होगी। इसी दौरान शिव जी वृद्ध योद्धा के वेश में चित्तन के घर के बाहर आकर आपस में मुकाबला करने के लिए पुकारे। चित्तन तो तंदुरुस्त जवान था, इस बूढ़े प्रतिद्वंद्वी को हराना तो बाएं हाथ का खेल था।
दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। कुछ ही समय में जवान थक गया और उनका सामना कर नहीं पाया। शिवजी ने उस जवान को पूरी तरह हराए और कहने लगे, तुम जवान हो, तुम्हारे लिए माँ समान गुरु पत्नी से दुर्व्यवहार करना महापाप है। मैं तुम्हें मार सकता था, परंतु एक मौका देता हूँ, तुम सुधर जाओ, कहकर चले गए।
लोगों को लगा कि जीतने वाले वृद्ध योद्धा ही थे। उन्होंने जाकर योद्धा की पत्नी को इस घटना को दोहराया। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसके पति तो घर पर ही थे। कुछ और जानकारी के पश्चात सबको यह निश्चय हो गया कि वृद्ध योद्धा के वेश को धारण करने वाले साक्षता शिव जी ही थे। कुछ और जानकारियों के पश्चात सबको यह निश्चय हो गया कि वृद्ध योद्धा के वेश को धारण करने वाले साक्षात शिव जी ही थे।
राजा को भी इस बात का पता चला। उसने वयोवृद्ध को बुलाकर सम्मान किया और उन दोनों को अपने ही देखरेख में रख लिया। जवान चित्तन को बुलाकर दंड दिया।